आगे सबक देखिए भाई। وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ فِيهِ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِفَسَادِهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِ الْبُزْعِ وَكَذَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ۔ بھئی گزشتہ سبق میں مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے کہ یہ جو سامنے سرکے کا مٹکا پڑا ہوا ہے یہ میں تمہیں بطور مہر کے دوں گا، اور بعد میں دیکھا گیا تو وہ شراب نکلی۔ یا دوسری صورت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا کہ یہ جو سامنے غلام ہے یہ میں تمہیں بطور مہر کے دوں گا، اور بعد میں دیکھا گیا تو وہ آزاد آدمی نکلا۔ تو اس صورت کے اندر دیکھو تسمیہ اور اشارہ دونوں جمع ہو رہے ہیں، خاوند نے اشارہ بھی کیا ہے اور اس چیز کا نام بھی لیا ہے۔ تو اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تسمیہ اور اشارہ جمع ہو جائیں تو اشارے کا اعتبار ہے، اس لیے کیونکہ اشارہ جو ہے ابلغ ہے فی تعریف، پہچان کروانے میں اشارہ اعلی ہے۔ کسی چیز کی طرف جب اشارہ کر دیا جائے تو وہاں کسی قسم کا ابہام نہیں ہوتا، گویا آپ نے اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا ہے کہ یہ چیز ہے بھائی۔ اور جبکہ تسمیہ کے اندر تو بعض اوقات حقیقی معنی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے لفظ کو، اور بعض اوقات لفظ کو مجازی معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہذا نام ذکر کرنے میں اتنی پہچان نہیں ہے جتنی پہچان اشارہ کرنے میں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اشارہ جب اعلی ہے تو اشارے کا اعتبار کیا جائے گا، اور جو مشار الیہ ہے وہی مہر مسمی بنے گا، اور اشارہ تو شراب کی طرف تھا تو وہ شراب ہی مہر مسمی بن جائے گی، لیکن وہ تو مہر بن نہیں سکتی تو پھر وہاں مہر مثل آ جائے گا۔ اور غلام کہہ کر آزاد آدمی کی طرف اشارہ کیا تو یہی مشار الیہ مہر مسمی بنے گا، لیکن یہ تو آزاد ہے یہ تو مہر بن نہیں سکتا تو پھر اس کی جگہ مہر مثل آ جائے گا۔ تو امام صاحب کے نزدیک دونوں صورتوں میں مہر مثل آ جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب تسمیہ اور اشارہ جمع ہو جائیں تو وہ تسمیہ کا اعتبار کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاوند نے ایک چیز کا باقاعدہ جب نام ذکر کر دیا ہے تو عورت کو گویا لالچ دلا دیا کہ یہ چیز میں تمہیں دوں گا، تو لہذا اس صورت میں مسمہ آئے گا، اور مسمہ تو ایک صورت میں سرکہ تھا تو لہذا اسی شراب کے ہم وزن سرکہ دینا پڑے گا، اور دوسری صورت میں جو مسمہ تھا وہ غلام تھا لہذا اسی آزاد آدمی کو غلام فرض کر کے اس کی جو قیمت بنتی ہو وہ قیمت خاوند کو دینا پڑے گی، اس لیے کیونکہ مثلیات کے اندر چیز کا مثل آیا کرتا ہے اور زوات القیم میں ان کی قیمت دینا پڑتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں تفصیل ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تسمیہ اور اشارہ جمع ہو جائیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ مسمہ اور مشار الیہ کی جنس ایک ہے یا الگ الگ ہے۔ اور پھر یہاں میں نے جنس کی بھی تعریف بتلائی تھی کہ جنس کسے کہتے ہیں، اس میں امام صاحب، امام ابو یوسف اور امام محمد ہمارے تینوں ائمہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جنس اس چیز کو کہیں گے جو باقی چیزوں سے صورت میں بھی مختلف ہو اور منافع کے اندر بھی مختلف ہو، صرف صورت میں مختلف ہو تو وہ الگ جنس نہیں، یا صرف منافع میں الگ ہے وہ الگ جنس نہیں، بلکہ صورت میں بھی باقی چیزوں سے مختلف ہو اور منافع میں بھی باقی چیزوں سے مختلف ہو تو پھر ہی اس کو الگ جنس شمار کریں گے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ چیز جو دوسری چیزوں سے مختلف ہو احکام کے اندر اس کو الگ جنس شمار کریں گے، اور جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک منافع کا اعتبار ہے کہ جو چیز منافع کے اندر دوسری چیزوں سے الگ ہو اس کو الگ جنس شمار کریں گے۔ تو امام صاحب کے نزدیک یہ جو سرکہ اور شراب ہیں یہ ایک ہی جنس ہیں، کیونکہ ان کے منافع اگرچہ الگ ہیں، سرکہ کھانے پینے میں استعمال ہوگا اور شراب تو نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے، منافع تو الگ ہیں لیکن صورت دونوں کی ایک ہی ہے بھائی، تو لہذا یہ ان کے نزدیک ایک ہی جنس، और इसी तरह आजाद आदमी और गुलाम ये भी एक ही जिन्स हैं, क्योंकि इनकी सूरत भी एक जैसी है और मुनाफे भी तकरीबन एक जैसे हैं। तो इमाम साहब का जाब्ता जिक्र हो चुका कि उनके नजदीक एक जिन्स हो या अलग अलग जिन्सें हों, दोनों सूरत में इशारे का एतबार है। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अहकाम का एतबार करते हैं, तो उनके नजदीक शराब और सिरका दोनों अलग अलग जिन्सें हैं, क्योंकि सिरका हलाल है और शराब हराम है, तो दोनों के अहकाम अलग हैं, तो अलग अलग जिन्सें हैं। इसी तरह गुलाम और आजाद आदमी, अगरचे इनकी सूरत एक जैसी है लेकिन इनके अहकाम अलग अलग हैं, गुलाम के अहकाम और हैं, आजाद आदमी के अहकाम और हैं, लिहाजा ये दोनों अलग जिन्सें शुमार होंगी और उनके नजदीक जिन्स चाहे एक हो या अलग अलग हो, दोनों सूरतों में तस्मिया का एतबार है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जो है वो मकासिद को देखते हैं और मकासिद के अंदर सिरका और शराब दोनों के मकासिद अलग हैं, क्योंकि सिरका खाने पीने में इस्तेमाल होता है और शराब तो नशे के लिए पी जाती है, तो दोनों के मकासिद और मुनाफे अलग हैं, तो अलग अलग जिन्सें हैं। जबकि आजाद आदमी और गुलाम जो हैं उनके मुनाफे तकरीबन एक जैसे हैं, इसलिए ये दोनों एक ही जिन्स शुमार होंगे। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का जाब्ता मैं जिक्र कर रहा था, वो फरमाते हैं कि जब तस्मिया और इशारा जमा हो जाए तो इस सूरत के अंदर अगर दोनों की जिन्स एक हो तो मुशारुन इलह का एतबार होगा, जो भी चीज मुशारुन इलह हुई वही महरे मुसम्मा बन जाएगी। जैसे नाम गुलाम का जिक्र किया और इशारा आजाद आदमी की तरफ किया, तो दोनों की जिन्स एक है, जब जिन्स एक है तो मुशारुन इलह का एतबार, जो भी चीज मुशारुन इलह है उसी ने महरे मुसम्मा बनना है, और मुशारुन इलह तो आजाद आदमी है, वो तो महर बन नहीं सकता, तो फिर लिहाजा महरे मिसल आ जाएगा। तो वो इस मसले में इमाम साहिब के साथ हैं। और अगर मुसम्मा और मुशारुन इलह की जिन्स अलग अलग हो तो फिर मुसम्मा का एतबार है। वजह यह कि वो फरमाते हैं कि तस्मिया के जरिए चीज की हकीकत का पता चल जाता है, उसकी माहियत का पता चल जाता है, उसके मुनाफे का पता चल जाता है, जबकि इशारे के जरिए चीज की जात का तो पता चलता है कि ये वाली चीज, लेकिन उसकी माहियत और हकीकत और मुनाफे का पता नहीं चलता। लिहाजा मालूम हुआ तस्मिया जिसके जरिए हकीकत और माहियत का पता चल जाए वो तारीफ के अंदर आला व अफजल है। लिहाजा इसलिए फिर जब दोनों की जिन्स अलग हो तो मुसम्मा का एतबार करेंगे, और शराब और सिरका दोनों की जिन्स अलग है क्योंकि दोनों के मकासिद अलग अलग हैं, मुनाफे अलग अलग हैं, तो जब जिन्स अलग हो तो फिर मुसम्मा का एतबार होता है, और मुसम्मा तो खावंद ने सिरका जिक्र किया है, लिहाजा इस सूरत में इसी शराब का हम वजन सिरका देना पड़ेगा। तो इस मसले में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के साथ हैं। फिर इसकी वजाहत भी की कि मसलन एक शख्स दूसरे को याकूत कहकर एक नगीना बेचता है और बाद में वो शीशा निकला, तो यहां देखो दोनों चीजों की जिन्स अलग अलग है, याकूत एक कीमती पत्थर का नाम है और शीशा और चीज है, तो जब मुसम्मा और मुशारुन इले की जिन्स अलग अलग हो तो फिर मुसम्मा का एतबार होता है। तो मालूम हुआ मबिया जो है वो मुसम्मा है, और मुसम्मा तो याकूत है और याकूत तो यहां मौजूद ही नहीं, लिहाजा ये बया ही मुनाकिद नहीं हुई। जबकि इसके मुकाबले में तारीकी के अंदर अंधेरे में एक शख्स ने दूसरे को एक कीमती पत्थर बेचा और कहा यह सुर्ख याकूत है, और दूसरे ने खरीद लिया, बाद में देखा तो वो सबज याकूत था। तो अब देखो दोनों की जिन्स एक है अगरचे रंग अलग अलग हैं, तो जब मुसम्मा और मुशारुन इलह की जिन्स एक हो तो इस सूरत में फिर मुशारुन इलह का एतबार होता है, तो मुशारुन इलह मबिया बनेगा, यानी जिस चीज की तरफ इशारा किया था, और मुशारुन इलह तो मौजूद है, लिहाजा बेअ मुनाकिद हो गई। लेकिन चूंकि वसफ मुश्तरी की रजामंदी के मुताबिक नहीं, लिहाजा वो इस बेअ को रद्द कर सकता है। बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद एक और मसला जिक्र किया साहिब हिदाया ने। साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर किसी शख्स ने दो गुलामों की तरफ इशारा किया और कहा ये दो गुलाम मैं तुम्हें बतौरे महर के दूंगा, और उन दो में से एक का आजाद आदमी निकला, तो फिर इस सूरत में भी वही जाब्ते जो पीछे जिक्र हो गए। इमाम साहिब के नजदीक तस्मिया और इशारा जब जमा हो जाए तो इशारे का एतबार है, यानी मुशारुन इले जो है वो महरे मुसम्मा बनेगा, और मुशारुन इले अगर ये दोनों गुलाम आजाद निकलते फिर तो महरे मिसल ने आना था, लेकिन इस वक्त तो एक इनमें गुलाम ही है, वो महर बन सकता है, तो वही महर बन जाएगा, अब महरे मिसल नहीं आएगा, यही गुलाम महर बन जाएगा। लेकिन ये 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम से कम महर 10 दिरहम हो सकता है, लिहाजा अगर ये चीज 10 दिरहम से कम हुई तो 10 दिरहम पूरे कर देंगे, लेकिन महरे मिसल नहीं आएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि मुसम्मा खुद मौजूद है। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तस्मिया का एतबार है, और तस्मिया में तो दो गुलाम जिक्र किए हैं, लिहाजा ये एक तो गुलाम है यही देना पड़ेगा, और दूसरे आजाद आदमी को गुलाम फर्ज करके उसकी कीमत लगाई जाएगी और फिर वो कीमत देना पड़ेगी। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो एक गुलाम है यही देंगे और महरे मिसल तक पूरा कर देंगे इसको, अगर ये महरे मिसल से कम है। फर्ज करो गुलाम की कीमत 2000 दिरहम है और औरत का महरे मिसल 3000 दिरहम है, तो ये गुलाम भी दे देंगे और 1007 दिरहम जायद भी दे देंगे। तो वो फरमाते हैं कि अगर ये दोनों आजाद होते तो महरे मिसल ने आना था, तो जब दोनों में से एक आजाद निकला तो इस सूरत में भी महरे मिसल आएगा और उसी को पूरा कर देंगे, ये एक गुलाम अदा कर देंगे और बाकी अलग दिरहम साथ दे दिए जाएंगे। और याद रखना, मैंने आपको बतलाया था कि साहिबे हिदाया का तरीका यह है कि जब वो मजाहिब बयान करते हैं तो सबसे पहले वो मजहब बयान करते हैं जो मजहब राजह हो, और जब दलाइल जिक्र करते हैं तो जो मजहब राजह होता है उसकी दलील सबसे आखिर में जिक्र करते हैं, ताकि ये उस मजहब की दलील भी हो जाए और बाकियों के लिए जवाब भी हो जाए। और इन दोनों मसलों में आप देखें, साहिब हिदाया ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील को सबसे आखिर में जिक्र फरमाया है। मालूम हुआ साहिब हिदाया यहां इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल को तरजीह दे रहे हैं। अब आइए आज के सबक पर। वईदा फर्रक अल्काजी बैन अज़्ज़ौजैन फिन निकाह अल-फासिद क़ब्ल अद-दुखूल फला महर लहा। भाई अब निकाह फासिद की बात आ गई। निकाह फासिद के बारे में मुख्तसरन कुछ बातें पहले भी गुजरी थीं। आपने पढ़ा था कि निकाह फासिद और निकाह बातिल एक ही चीज हैं। बैअ के अंदर एक होती है बैअ बातिल, एक होती है बैअ फासिद, दोनों अलग अलग हैं। बैअ बातिल वो होती है जो जात के एतबार से ही सही ना हो, जो बैअ, और बैअ फासिद वो है जो जात के एतबार से तो बैअ सही है लेकिन वसफ के एतबार से वो बैअ सही नहीं। तो बैअ बातिल मसलन मबीआ माल ही नहीं है, तो ये बैअ जात के एतबार से ही सही नहीं क्योंकि मबीआ माल ही नहीं है। जबकि बैअ फासिद यह है कि मबीआ माल तो है लेकिन साथ कोई ऐसी चीज जिक्र कर दी, कोई ऐसी शर्त जिक्र कर दी जिसकी वजह से बैअ में फसाद आ गया, तो ये बैअ जात के एतबार से तो सही है कि मबीआ माल है लेकिन वसफ के एतबार से सही नहीं, फासिद है भाई। तो बैअ फासिद और होती है, बैअ बातिल और होती है, लेकिन निकाह फासिद और निकाह बातिल एक ही चीज है। अब सूरत मसला ये कि एक शख्स और एक औरत जो है वो आपस में निकाह फासिद कर लेते हैं। निकाह फासिद कर लिया, मसलन औरत इद्दत के अंदर थी, उसको पहले खावन ने तलाक दे दी है, और आप जानते हैं कि इद्दत के दौरान औरत आगे निकाह नहीं कर सकती, लेकिन इस औरत ने इद्दत के अंदर ही निकाह कर लिया, तो याद रखो ये निकाह फासिद है। या इसी तरह आप जानते हैं कि एक शख्स एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 4 औरतों को अपने अकद में रख सकता है। अब एक शख्स के अकद में 4 बीवियां थीं, उसने इनमें से एक बीवी को तलाक दे दी, और अभी ये चौथी बीवी इद्दत के अंदर ही है कि इसने 5वीं औरत से निकाह कर लिया, तो याद रखो ये भी निकाह फासिद है। इसलिए क्योंकि चौथी बीवी अभी इद्दत में है, अभी पूरी तरह उसके साथ निकाह खत्म नहीं हुआ, तो गोया बाज एतबार से वो अभी भी निकाह में है और ये अगला निकाह कर रहा है, तो ये तो गोया 5 बीवियां हो जाएंगी इसके अकद में और ये तो जायज नहीं। तो लिहाजा चौथी बीवी की इद्दत में 5वीं बीवी से निकाह कर लेगा, तो इस सूरत के अंदर यह निकाह फासिद है। यह इसी तरह एक शख्स एक औरत से निकाह करता है और मुद्दत मुतय्यन कर देते हैं कि मसलन हम 1 साल के लिए निकाह करते हैं, तो इस सूरत में तो ये तो मुता बन गया भाई, और निकाह मुता तो बातिल है, लिहाजा ये निकाह भी फासिद है। या इसी तरह एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया बगैर गवाहों के, भाई गवाहों का होना तो शर्त है, गवाह होंगे तो निकाह होगा, गवाह नहीं तो निकाह भी नहीं, तो ये निकाह भी फासिद है। और याद रखो निकाह फासिद का कोई हुक्म नहीं है जब तक सोहबत न कर ली जाए। हां जब खावंद सोहबत कर लेगा फिर उसके बाद अहकाम आ जाएंगे, फिर इस औरत को महर भी देना पड़ेगा, फिर इस औरत पर बाद में इद्दत भी वाजिब होगी, और नीज अगर इस सोहबत की वजह से औरत हामिला हो गई और इसने बच्चे को जन्म दिया तो यह बच्चा इसी शख्स का शुमार होगा, यानी इस बच्चे का नसब इस शख्स से साबित हो जाएगा, यह बच्चा वलदुल जिना शुमार नहीं होगा भाई। तो निकाह फासिद का कोई हुक्म नहीं है सोहबत से पहले, और निकाह फासिद में जरूरी है कि जब इनको मसले का पता चल गया तो फिर जरूरी है कि एक दूसरे से जुदा हो जाए मियां और बीवी, क्योंकि इनका निकाह हुआ ही नहीं भाई। तो इसको कहते हैं मुतारकत, तर्क से है, तर्क का माना छोड़ना, तो मुतारकत यानी बाहम एक दूसरे को ये छोड़ देंगे, और अगर ये मुतारकत नहीं करते तो फिर काजी इनके दरमियान जुदाई करवा देगा। और इसमें इसमें खावंद तलाक वगैरह का लफ्ज भी नहीं कहेगा, इसलिए क्योंकि निकाह ही नहीं हुआ तो तलाक किस चीज की भाई, तलाक का मालिक तो खावंद निकाह के बाद बनता है, और यहां तो ये निकाह ही फासिद है, बातिल है, इसका कोई एतबार नहीं। तो बस एक दूसरे को छोड़ने का पुख्ता इरादा कर लें तो ये इनमें जुदाई आ जाएगी, या काजी फैसला कर देगा, इनमें जुदाई करवा देगा। और अगर खावंद बीवी के साथ सोहबत कर चुका है और फिर बाहम ये मुतारकत करते हैं, इनको मसले का पता चल गया है, तो इस सूरत में खावंद का बाकायदा जुबान से भी कहना जरूरी है कि मैं इससे जुदाई इख्तियार करता हूं, अब मैं इस औरत से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ कि निकाह फासिद का कोई हुक्म नहीं है सोहबत से पहले, और सोहबत के बाद फिर अहकाम आ जाएंगे, जैसे वती भी शुबा की वजह से अहकाम आ जाते थे, यहां भी अहकाम आ जाएंगे। मैंने आपको बतलाया था कि निकाह फासिद की वजह से भी जो वती कर ली जाए वो भी वती भी शुबा है, इसलिए क्योंकि इसने वती कर ली इस शुबे की वजह से कि शायद मेरा निकाह हो चुका है, तो ये भी क्या है, वती भी शुबा ही है भाई। तो कहते हैं वह इदा फर्रकल काजी बैन ज़ौजैन फिन निकाहिल फासिदी, और जब काजी जुदाई करवा दे मियां बीवी के दरमियान निकाह फासिद में, कबल दुखूली सोहबत से पहले ही, फला महरा लहा, तो इस औरत के लिए कोई महर नहीं होगा। भाई आपने पढ़ा है निकाह सही हो, वहां पर अगर खावन सोहबत से पहले तलाक दे दे तो अगर महर मुकरर किया था तो उसका निसफ देना पड़ेगा, और अगर सोहबत कर ली तो पूरा महर देना पड़ेगा। जबकि निकाह फासिद में सिर्फ आकद किया है, सोहबत अभी नहीं की, और काजी इनमें जुदाई करवाता है, ये आपस में एक दूसरे से जुदा होते हैं, तो फिर कोई महर वगैरह नहीं आएगा भाई, क्योंकि जब तक वती नहीं निकाह फासिद का कोई हुक्म नहीं है, वो कल आदम है यानी शुमार ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वईदा फर्रकल काजी बैन ज़ौजैन फिन निकाहिल फासिदी कबल दुखूली, और जब जुदाई करवा दे काजी मियां बीवी के दरमियान निकाह फासिद में, कबल दुखूली सोहबत से पहले, फला महर लहा, तो उस औरत के लिए कोई महर नहीं होगा, लियन्नल महर फीही ला यजिबु बिमुजर्रदिल अक्दि लिफसादिही, इसलिए क्योंकि निकाह फासिद में महर जो है ला यजिबु वाजिब नहीं होता, बिमुजर्रदिल अक्दि सिर्फ अकद कर लेने से, लिफसादिही बवजह अकद के फासिद होने के। भाई अकद किया तो है लेकिन वो तो अकद फासिद है, उसका तो कोई एतबार ही नहीं है, तो लिहाजा सिर्फ अकद की वजह से कुछ भी वाजिब नहीं होगा, जबकि निकाह सही के अंदर सिर्फ अकद कर लिया है तो महर का कुछ ना कुछ हिस्सा आ गया, और सोहबत कर लेगा तो फिर पूरा महर आ जाएगा, सोहबत से पहले तलाक दे दी तो निस्फ महर देना पड़ेगा। तो कहते हैं ली अन्नल महर फी ला यजिबु मिन मुजर्रदिल अक्द, निकाह फासिद के अंदर महर सिर्फ अकद की वजह से वाजिब नहीं होता, लिफसादिही बवजह अकद के फासिद होने के, वही नमा यजिबु बिस्तीफा मनाफिल बुज़ई, और ये महर तो वाजिब होता है मनाफे बुज़ा को वसूल करने से, यानी जब खावन सोहबत कर लेगा और मनाफे बुज़ा वसूल कर लेगा अब महर वाजिब हो जाएगा, अब महर देना पड़ेगा। वह कजा बादल खलवती, और इसी तरह खलवत के बाद भी है, इसी तरह खलवत के बाद भी है, यानी अगर निकाह फासिद में खलवत हो जाए तो भी औरत को महर नहीं मिलेगा। भाई देखिए, आपने पीछे पढ़ा था कि खलवत सहीहा को भी वती के कायम मकाम किया गया है, एक शख्स एक औरत से निकाह करता है और एक महर मुकरर किया, तो अगर इस औरत से खावंद ने सोहबत कर ली तो पूरा महर देना पड़ेगा, और अगर खलवत सहीहा पाई गई तो यह भी यूं समझो सोहबत हो गई, लिहाजा पूरा महर देना पड़ेगा। तो खलवत सहीहा भी किसके हुक्म में है? सोहबत ही के हुक्म में है। लेकिन यहां तो ये जो निकाह फासिद है इसके अंदर ये जो खलवत है ये खलवत सहीहा है ही नहीं, ये खलवत फासिदा है, ये खलवत फासिदा। वजह यह कि यहां पर खलवत के बावजूद खावन सोहबत पर कादिर नहीं। देखो निकाह सही पर जरा फिर आ जाएं, निकाह सही में जब खलवत पाई गई तो इस खलवत की वजह से खावन सोहबत पर कादिर हो गया जी। करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन खलवत पर कादिर हो गया, खलवत का मौका उसको मिल गया। तो निकाह सही में खलवत सहीहा की वजह से खावन सोहबत पर कादिर हो जाता है, इसलिए उसको सोहबत ही के कायम मकाम कर दिया गया। जबकि निकाह फासिद के अंदर तो निकाह हुआ ही नहीं, वहां अगरचे खलवत भी हो जाए फिर भी यह औरत उस शख्स के लिए हलाल नहीं है, इस शख्स के लिए इस औरत से सोहबत करना हराम है। तो यहां देखो शरई मानिअ मौजूद है, जब शरई मान्य मौजूद है तो खलवत के बावजूद खावन सोहबत पर कादिर नहीं, जब खावन सोहबत पर कादिर नहीं तो यह खलवत सोहबत के कायम मकाम भी नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वकदा बादल खलवती, और इसी तरह खलवत के बाद भी हो गए, यानी औरत के लिए महर नहीं होगा। लिया नल खलवत फी ही लायसबुतु बिहद तमक कोनो, इसलिए क्योंकि निकाह फासिद के अंदर जो खलवत होती है लायसबुतु बिहद तमक कोनो, इसकी वजह से खावंद के लिए कुदरत साबित नहीं होती, यानी वती पर कुदरत साबित नहीं होती, क्योंकि शरई मान्या मौजूद है कि इस औरत के साथ निकाह फासिद हुआ है, यह औरत अभी भी इस आदमी के लिए हलाल नहीं, तो यह शरई मानिअ मौजूद है, और जब मानिअ मौजूद हो तो उसको खलवत सहीहा नहीं कहते बल्कि खलवत फासिदा कहते हैं। अनल खलवत फी ही, इसलिए क्योंकि इस निकाह फासिद के अंदर जो खलवत है ला यसबुतु बिहद तमकुनु, इसके जरिए खावंद की वती पर कुदरत साबित नहीं होती, फला तुकामु मकाम अलवती, लिहाजा इस खलवत को वती के कायम मकाम भी नहीं किया जाएगा, लिहाजा औरत को महर नहीं मिलेगा इस सिर्फ खलवत पाए जाने पर। हां जब सोहबत कर लेगा फिर महर देना पड़ेगा। तो कहते हैं फईन दखल बिहा, अगर खावंद ने इस औरत से सोहबत कर ली फलहा महरू मिसलिहा, तो इस औरत के लिए इसका महर मिसल होगा, ला युजादु अलल मुसम्मा, लेकिन इसको मुसम्मा पर बढ़ाया नहीं जाएगा। भाई एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया है और निकाह फासिद है, और निकाह फासिद का तो कोई एतबार नहीं, लिहाजा जब तक सोहबत नहीं की महर नहीं, लेकिन जब सोहबत कर लेगा अब महर देना पड़ेगा। लेकिन क्या यह मुसम्मा जो मुकरर किया था इन्होंने आपस में ये वाला महर आएगा या महरे मिसल आएगा? कहते हैं भाई ये निकाह ही नहीं, जब निकाह नहीं तो जो मुकरर किया है उसका भी कोई एतबार नहीं, जब उसका कोई एतबार नहीं तो महरे मिसल आएगा, लिहाजा यहां क्या देना पड़ेगा? महरे मिसल देना पड़ेगा। लेकिन याद रखो ये महरे मिसल जो इस औरत को दिया जाएगा ये उस जो इन्होंने आपस में मुकरर किया है उसके अंदर अंदर ही ये महर महरे मिसल दिया जाएगा, अगर उससे जायद है महरे मिसल तो वो जायद औरत को नहीं मिलेगा। आया क्या है? महरे मिसल मुसम्मा, वो जो महरे मुसम्मा था जो इन्होंने मुकर्रर किया वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि निकाह ही नहीं सही। मुसम्मा तो तब आता है जब निकाह सही हो जाए, तो जब निकाह सही नहीं तो वो महरे मुसम्मा भी सही नहीं, उसका कोई एतबार नहीं। जब उसका कोई एतबार नहीं तो महरे मिसल आ जाएगा। लेकिन ये महरे मिसल अगर उस मुसम्मा के बराबर हुआ या कम हुआ तो फिर पूरा महरे मिसल देंगे, मुसम्मा नहीं देंगे। मसलन मुसम्मा कितना है 2000 दिरहम और औरत का महर मसलन 1000 दिरहम है तो फिर महरे मिसल दे देंगे औरत को, बस 1000 दिरहम देंगे। और अगर महरे मिसल औरत का 2000 है और मुसम्मा भी कितना था 2000, तो फिर भी उसी के अंदर पूरा हो रहा है लिहाजा 2000 औरत को दे देंगे। लेकिन अगर महरे मिसल मुसम्मा से ज्यादा हुआ, महरे मिसल 3000 है और इन्होंने आपस में जो निकाह फासिद में मुकरर किया था वो कितना है 2000 है, तो फिर इस औरत को 2000 ही मिलेगा, वो 2000 से जो जायद है वो नहीं मिलेगा। वजह ये क्योंकि इस 2000 में खुद औरत राजी हो चुकी है, गोया इसने जायद जो था उसमें खुद कमी कर दी है जी। इसने उसमें खुद कमी कर दी है तो ये खुद कमी पर जब राजी है तो लिहाजा अब 2000 ही मिलेगा, महरे मिसल जो 2000 से ज्यादा है वो नहीं मिलेगा। तो कहते हैं फईन दखला बिहा, अगर खामन ने इस औरत से सोहबत कर ली, फलहा महरू मिसलिहा, तो इस औरत के लिए इसका महर मिसल होगा। ला युजाद अलल मुसम्मा इंदना, हमारे नजदीक इस महर मिसल को मुसम्मा पर बढ़ाया नहीं जाएगा। यह उस वक्त है अगर इन्होंने कुछ महर मुकरर किया था जी। आएगा तो महर मिसल, लेकिन उस मुसम्मा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने कोई मुसम्मा जिक्र ही नहीं किया, फिर जितना भी महरे मिसल हो वो सारा देना पड़ेगा, वो सारा देना पड़ेगा। याद रखो ममलिकत इस्लामिया के अंदर जब भी कोई शख्स वती करेगा किसी औरत से तो दो चीजों में से एक जरूर आएगी, या महर देना पड़ेगा या उस शख्स पर हद जारी की जाएगी, उसको जिना की सजा उन पर जारी की जाएगी। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा ममलिकत इस्लामिया के अंदर कोई भी वती वो हद या महर से खाली नहीं हो सकती। तो यहां पर हद तो नहीं आएगी क्योंकि शुबा निकाह तो है, इन्होंने ये तो समझे थे हमारा निकाह हो गया है, इनको तो मसले का पता नहीं था, तो हद तो नहीं आएगी। हद तो अदना शुबे की वजह से भी साकित हो जाया करती है, तो जब हद नहीं आई तो फिर महर जरूर आएगा, तो महरे मिसल इस औरत को मिलेगा। लेकिन वह महरे मिसल हमारे नजदीक मुसम्मा पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। खिलाफन लि जुफरा रहमहुल्ला, बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्ला के, वया तबिरु बिल बैइल फासिदी, वो इसको कियास करते हैं बैइ फासिद पर। याद रखो बैइ फासिद मैंने आपको बतलाया कि वो बैइ है जो जात के एतबार से तो सही है, वसफ के एतबार से सही नहीं। जात के एतबार से सही होने का मतलब यह है कि मबीआ माल है जी। एक शख्स ने दूसरे शख्स को अपनी गाड़ी फरोख्त की कि मैं 10 लाख रुपए में यह गाड़ी आपको फरोख्त करता हूं, लेकिन शर्त यह है कि 3 दिन के बाद मैं गाड़ी आपके हवाले करूंगा क्योंकि 3 दिन तक मुझे भी गाड़ी की जरूरत है भाई, मुझे कुछ काम वगैरह करने हैं। तो उसने ये शर्त लगा दी, भाई ये शर्त जो इसने लगाई इसमें देखो बाय का फायदा है, तो इस शर्त की वजह से बैय ही फासिद हो गई। वजह यह कि बैय होते ही मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है, लिहाजा मबीआ मुश्तरी के हवाले करना चाहिए। लेकिन यहां तो बाय ने मबीए को अपने फायदे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए 3 दिन के लिए रोक लिया, ये शर्त लगा दी, तो ये बैय फासिद है भाई। तो ये जो बैय फासिद है इसमें बाय और मुश्तरी गुनाहगार होंगे क्योंकि इन्होंने शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, एक ऐसे तरीके पर बैय कर ली जिससे शरीयत ने मना किया था। तो लिहाजा दोनों पर जरूरी है कि इस बैय को खत्म करें, फसख करें, वरना दोनों गुनाहगार होंगे। और नीज ये बैय फासिद है, बैय फासिद के अंदर मुश्तरी जो है जब बाय की मर्जी से मबीए पर कब्जा करेगा तब मालिक बनेगा, उससे पहले मालिक नहीं। जबकि आम बैय के अंदर बैय होते ही मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है। मसलन एक कलम आपकी जेब पर लगा हुआ है और आपने मुझे कहा यह कलम मैंने आपको 100 रुपए में फरोख्त कर दिया, और मैंने कहा मैंने कबूल किया, मुझे मंजूर है। तो जैसे ही इजाब और कबूल हुआ मैं कलम का मालिक बन गया, कलम बेशक आपकी जेब पर लगा हुआ है लेकिन अब मैं यानी मुश्तरी उसका मालिक बन चुका है। तो आम बै के अंदर अकद होते ही मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है, जबकि बै फासिद उसका तो शरान कोई एतबार नहीं है, वहां सिर्फ ईजाब और कबूल से मुश्तरी मालिक नहीं बनेगा बल्कि जब मुश्तरी मबीए पर कब्जा कर लेगा बाकायदा बाय की रजामंदी के साथ तो फिर मुश्तरी उस मबीए का मालिक बनेगा। लेकिन इन पर इस बै को तोड़ना जरूरी है। और नीज यह भी याद रखना बै फासिद का शरान कोई एतबार नहीं, यह फासिद बै है, लिहाजा इसमें समन नहीं देने पड़ेंगे, उस चीज की पूरी कीमत देना पड़ेगी। भाई कीमत जो बाजार में मार्केट में एक चीज का जो नर्ख होता है वो उसकी कीमत कहलाती है। और समन, समन तो बाय और मुश्तरी आपस में जो भी तय कर लें। फर्ज करो मार्केट में इस गाड़ी की कीमत 12 लाख थी भाई, और इन्होंने आपस में समन कितने तय किए हैं 10 लाख। तो याद रखो इस सूरत में ये जो मुश्तरी है इस पर समन यानी 10 लाख नहीं आए, इसको पूरी कीमत देना पड़ेगी गाड़ी की यानी 12 लाख रुपए, क्योंकि समन तो तब आते अगर बै हुई होती। ये बै तो शरीयत के नजदीक फासिद है, इसका एतबार ही कोई नहीं। जब बै का एतबार कोई नहीं तो इस समन का भी कोई एतबार नहीं, लिहाजा मुश्तरी को कीमत देना पड़ेगी। लेकिन बहरहाल दोनों पर लाजिम है कि इस बै को खत्म करें वरना दोनों गुनाहगार होंगे। वही तो इमाम जुफर रहमहुल्ला इस निकाह फासिद को कियास करते हैं बै फासिद पर, और बै फासिद के अंदर तो बिल इत्तेफाक मबीए की कीमत आया करती है, जितनी भी कीमत हो वो देना पड़ेगी, चाहे वो समन से कम हो जो तय किए थे, वो जो समन तय किए थे ये कीमत चाहे उस समन से कम हो चाहे ज्यादा, पूरी कीमत देना पड़ती है। तो निकाह फासिद में भी वो फरमाते हैं तस्मिया का कोई एतबार नहीं, वो जो महर इन्होंने आपस में मुकरर किया था उस महर का कोई एतबार नहीं, क्योंकि निकाह सही हो फिर उस तस्मिया का एतबार होता है, वो जो आपस में महर मुकरर किया था तो वो जब निकाह सही हो फिर तस्मिया का एतबार होता है और वो महर मुसम्मा आ जाता है। लेकिन यहां तो निकाह ही सही नहीं, निकाह फासिद है, लिहाजा वो महरे मुसम्मा नहीं आएगा बल्कि महरे मिसल आएगा, जैसे बै फासिद में कीमत आती है, और फिर जैसे बै फासिद में पूरी कीमत देना पड़ती है चाहे उस मुकर्ररा समन से कम हो चाहे ज्यादा। तो यहां पर भी निकाह फासिद है तो पूरा महरे मिसल देना पड़ेगा चाहे वो मुसम्मा से कम हो चाहे मुसम्मा से ज्यादा हो। ये किसकी दलील है? इमाम जुफर रहमहुल्ला की। तो कहते हैं खिलाफन लिजुफर रहमहुल्ला, बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्ला के, वयातबिरु बिल बैइल फासिदी, वो इसको कियास करते हैं बै फासिद पर। वलाना, और हमारी दलील ये है, अब हमारी दलील आ गई, हमारी दलील ये है कि अन्नल मुस्तौफा लैस बिमालिन व इन्नमा यतक़व्वमु बित्तस्मियति। हमारी दलील ये है कि अन्नल मुस्तौफा लैस बिमालिन, वो चीज जो वसूल की गई है वो माल नहीं है, यानी खावंद ने सोहबत कर ली, मुनाफे बुजा वसूल कर लिए, लेकिन ये मुनाफे बुजा तो माल नहीं है जी। ये तो माल नहीं है। वह इन नमा यतक़व्वमु बित्तस्मियति, ये जो मुनाफे बुजा हैं ये कीमत वाले बन जाते हैं बित्तस्मियति, किसकी वजह से? तस्मिया। मैंने बताया था तस्मिया का माना है जिक्र करना, या इसका तर्जमा कर लें मुकर्रर करना, मुराद है निकाह में महर मुकर्रर करना। तो तस्मिया का क्या माना? निकाह में महर मुकर्रर करना। तो कहते हैं हमारे नजदीक कि अन्नल मुस्तफा लैसा बिमालिन, ये मुनाफे बुजा जो वसूल किए गए ये तो माल नहीं है। वह इन नमा यतक़व्वमु बित्तस्मियति, ये कीमत वाले बनते हैं बित्तस्मियति, किसकी वजह से? तस्मिया की वजह से, यानी निकाह में महर मुकरर करने की वजह से, यानी महर इसी का इवज होता है ना, तो वो निकाह में जो महर मुकरर कर दिया जाता है उसकी वजह से ये कीमत वाले बन गए, वरना तो ये कीमत वाले नहीं, इनकी कीमत नहीं है। सिर्फ निकाह में शरीयत ने हुक्म दिया है कि अंतब तगू भी अमवालिकुम, कि तुम अपने मालों के जरिए अपनी बीवियों को तलाश करो, तो मालूम हुआ माल जरूर देना पड़ेगा। तो वो इस निकाह में जो महर आपस में मुकरर करते हैं, उस महर मुकरर करने की वजह से वो मुनाफ़े बुज़ा कीमत वाले हो गए। वैसे तो वो माल ही नहीं थे, लेकिन इस निकाह में जो महर मुकरर किया गया तो वो क्या बन गए, कीमत वाले हो गए। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलाना, हमारी दलील ये है अन्नल मुस्तौफा लैसा बिमालिन, कि वो चीज जिसको वसूल किया गया यानी मुनाफ़े बुज़ा जो है लैसा बिमालिन, वो माल नहीं है। वह इन नमा यतक़व्वमु बित्तस्मियती, और ये तो कीमत वाले बनते हैं अक़द में महर मुकर्रर करने की वजह से ही। फ़इज़ाज़ादत अला महरिल मिस्ली लम यजिबि ज़ियादतु लिअदमि सिहति तस्मियती, फ़इज़ाज़ादत अला महरिल मिस्ली, तो जब ये तस्मिया बढ़ गया महरे मिसल पर। हमने क्या कहा था, हमारा मजहब क्या है कि महरे मिसल देंगे लेकिन इसी मुसम्मा के अंदर अंदर देंगे, इससे जायद हो तो नहीं देंगे। तो अब सूरत ये, मसलन मुसम्मा था 2000 और महरे मिसल था मसलन 1000 दिरहम। महरे मिसल थोड़ा है और मुसम्मा क्या है, ज्यादा है, तो हमारे नजदीक महरे मिसल आया है वो ही 1000 देंगे, ये 2000 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये तस्मिया ही सही नहीं है। निकाह होता तो तस्मिया सही होता, निकाह सही नहीं तो ये तस्मिया यानी महर का मुकरर करना भी सही नहीं, इसका कोई एतबार नहीं। जब इसका कोई एतबार नहीं तो वही 1000 महरे मिसल ही औरत को मिलेगा। तो कहते हैं फ़ईदा ज़ादत अला महरिल मिसली, जब तस्मिया बढ़ जाए महरे मिसल पर, लम यजिबी ज्यादतु, तो वो जो जायद है वो वाजिब नहीं होगा। तस्मिया बढ़ गया 2000 है और महरे मिसल कितना है, 1000 है, तो ये जो 1000 से जायद है ये वाजिब नहीं। क्यों नहीं वाजिब होगा, क्योंकि इस तस्मिया का कोई एतबार नहीं। क्यों नहीं एतबार, क्योंकि इस निकाह का कोई एतबार नहीं है। निकाह का एतबार होता तो फिर उस तस्मिया का भी एतबार होता, वो जो महर मुकरर किया है। तो ये माना है तो लम ये जिबी ज्यादा तू, तो ये जो महरे मिसल पर जायद है ये वाजिब नहीं होगा, बस महरे मिसल ही देना पड़ेगा। ले आदमी से खती तस्मियती, बवजह तस्मिया के सही न होने के, क्योंकि ये तस्मिया सही नहीं भाई। वह इन न कसत, और अगर ये तस्मिया कम हुआ महरे मिसल से, मसलन तस्मिया कितना है 2000 और महरे मिसल 3000 है फर्ज करो, अब महरे मिसल ज्यादा है और तस्मिया कम, ये महरे मिसल तो तस्मिया से ज्यादा हो रहा है और औरत ने तो खुद जब 2000 जिक्र किया है, मालूम हुआ 2000 से जायद वो खुद कमी कर चुकी है, उसको माफ कर चुकी है जी। तो लिहाजा वो जायद नहीं देंगे, फिर ये 2000 ही दे देंगे। महरे मिसल 3000 बन रहा है लेकिन 1000 जो जायद बन रहा है वो नहीं देंगे, क्योंकि औरत 2000 पर खुद राजी हो चुकी है, मालूम हुआ इसने खुद ही 1000 दिरहम कमी कर दी है अपने महरे मिसल से भाई। बात समझ में आ गई। ये माना है वह इन नाकासत, और अगर तस्मिया कम हो महरे मिसल से, लम तजिबी ज्यादतु अलल मुसम्मा, तो वाजिब नहीं होगा वो जो जायद है मुसम्मा पर। मुसम्मा 2000 है तो 2000 से जायद जो 1000 है वो वाजिब नहीं होगा। ले आदमी तस्मियती, बवजह तस्मिया ना होने के, क्योंकि उसका तो तस्मिया ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा तस्मिया कितने का किया है, 2000 का। महरे मिसल कितना है, 3000, तो 2000 से जायद का तो तस्मिया ही नहीं है, औरत ने उसको जिक्र ही नहीं किया था। औरत ने जिक्र ही कितने किए थे, 2000, तो 2000 से जायद का तस्मिया ही नहीं है, लिहाजा वो जायद नहीं आएगा। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं फिर देखिए, तो कहते हैं वह इन नाकासत, और अगर तस्मिया महरे मिसल से कम हुआ, लम तजिबी ज्यादतु अलल मुसम्मा, तो वो जो जायद है महरे मुसम्मा पर वो वाजिब नहीं होगा। ले आदमी तस्मियती, क्योंकि उस जायद का तो तस्मिया ही नहीं है, तस्मिया तो सिर्फ 2000 तक का है। बात समझ में आ गई। बाशारहीन फरमाते हैं कि निकाह फासिद में मिन वजह तस्मिया का एतबार है, मिन वजह तस्मिया का एतबार नहीं। बाज एतबार से तस्मिया का एतबार है, बाज एतबार से तस्मिया का एतबार नहीं। मसलन देखो, मुसम्मा कितना 2000, महरे मिसल कितना 3000, तो जब महरे मिसल मुसम्मा से ज्यादा हो रहा हो तो कहते हैं अब मुसम्मा का एतबार करेंगे और 2000 ही देंगे। और अगर महरे मिसल मुसम्मा से कम है, मसलन 1000 है, तो फिर इस सूरत में मुसम्मा का एतबार नहीं करेंगे, महरे मिसल ही देंगे। तो बाद शारहीन क्या तकरीर फरमाते हैं कि निकाह फासिद के अंदर बाज एतबार से देखा जाए तो मुसम्मा, वो जो महर मुकरर किया है, उस मुसम्मा का एतबार है, बाज एतबार से मुसम्मा का एतबार नहीं। अगर महरे मिसल इस मुसम्मा से ज्यादा हो रहा है तो मुसम्मा ही देंगे, मुसम्मा का एतबार करेंगे। और अगर महरे मिसल मुसम्मा से कम है तो महरे मिसल वो कम वाला दे देंगे, मुसम्मा का एतबार नहीं करेंगे। तो निकाह फासिद में बाज एतबार से मुसम्मा का एतबार है, बाज एतबार से मुसम्मा का एतबार नहीं। जबकि बाज और शारहीन ने और तकरीर की, वो फरमाते हक यह है कि निकाह फासिद में मुसम्मा का बिल्कुल एतबार है ही नहीं। वो फरमाते हैं कि किसी भी एतबार से मुसम्मा काबिले एतबार नहीं है भाई, मुसम्मा का कोई एतबार नहीं है, क्योंकि निकाह फासिद है भाई। निकाह सही होता मुसम्मा का एतबार होता है, निकाह फासिद में मुसम्मा का एतबार नहीं होता। तो फिर उन पर इश्काल होता है, उन पर इश्काल होता है कि महरे मिसल अगर मुसम्मा से बढ़ जाए तो मुसम्मा ही देते हैं, महरे मिसल नहीं देते, तो मुसम्मा का एतबार तो किया जा रहा है। और आप कहते हैं कि निकाह फासिद में मुसम्मा का एतबार ही नहीं होता, तो वो जवाब देते हैं, कहते हैं देखो वहां पर दरअसल औरत की रजामंदी आ चुकी है, उस 2000 से जायद में उसने खुद कमी की है, और कमी एक ही शख्स की जानिब से हो जाती है, उसमें दूसरे के कबूल करने का या उसमें कब्जा करने की जरूरत नहीं। मसलन आप एक चीज खरीदने दुकान पर गए, 10,000 की चीज है, दुकानदार आपको कहता है मैं आपको 5,000 रुपए की देता हूं, तो देखो जो दुकानदार ने कमी कर दी उसमें वो कमी करने वाले की तरफ से ही कमी पूरी हो गई, उसमें आपके लिए कबूल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। तो कमी जब किसी चीज में की जाए तो वो एक ही शख्स पर पूरी हो जाती है, लेकिन दूसरे के लिए अगर कोई इजाफा करता है यानी उसको मालिक बनाता है तो वहां कब्जा होगा तो वो मालिक बनेगा, कब्जा नहीं होगा तो मालिक भी नहीं। हिबा से समझ लो इसको, हिबा याद रखो जब आप किसी को कोई तोहफा देते हैं तो सिर्फ आपके कहने से वो उस चीज का मालिक नहीं बनता। मसलन मेरे पास एक किताब पड़ी है, मैं आपसे कहता हूं ये किताब मैंने आपको तोहफे के तौर पर दे दी, तो सिर्फ मेरे ये कहने से आप मालिक नहीं बने। हां जब आप इसको उठा लेंगे, इस पर कब्जा कर लेंगे, फिर आप इसके मालिक बन जाएंगे। तो हिबा जो है कब्जे से ताम होता है, पूरा होता है, जब जिसको हिबा किया गया है वो क्या कर ले, उस चीज पर कब्जा कर ले, फिर हिबा पूरा हो गया और फिर वो शख्स मालिक बना, उससे पहले वो मालिक नहीं। तो मालूम हुआ हिबा के अंदर दूसरे शख्स का कब्जा और उसका कबूल करना भी जरूरी है। तो कमी एक ही आदमी की तरफ से पूरी हो जाती है, लेकिन जायद देना है, दूसरे को मालिक बनाना है, जब तक वो कब्जा नहीं करेगा वो उसका मालिक भी नहीं। तो यहां पर भी जब महरे मिसल है 3000 और औरत ने मुसम्मा कितना जिक्र किया है 2000, मालूम हुआ 2000 से जो जायद था वो औरत ने खुद ही कमी कर दी है, और कमी तो एक फर्द की तरफ से भी पूरी हो जाती है। तो यहां जो हमने कहा कि मुसम्मा से जायद नहीं देंगे, वो इस औरत की रजामंदी की वजह से, इसके मुसम्मा होने की वजह से नहीं, कि ये इस कमी पर औरत खुद राजी हो चुकी है, इस रजामंदी की वजह से इस मुसम्मा से जायद हम नहीं देंगे। तो यहां जो मुसम्मा से जायद औरत का हक था, औरत खुद उसको साकित करने पर राजी हो गई है, तो इसलिए इस औरत की रजामंदी की वजह से इस मुसम्मा से ज्यादा हम नहीं देंगे। ये वजह नहीं कि इस मुसम्मा का एतबार है, बल्कि इससे जायद औरत ने गोया खुद ही क्या कर दी, कमी कर दी, लिहाजा वो औरत को नहीं मिलेगा। जबकि अगर महरे मिसल कम बनता है, मसलन 1000, हालांकि खावंद और बीवी ने कितना जिक्र किया था, 2000 जिक्र किया था, तो महरे मिसल से जो जायद था वो तो अभी औरत के हवाले नहीं किया तो औरत उसकी मालिका भी नहीं बनी। जब औरत उसकी मालिका नहीं बनी तो वो ही हजार ही देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। जैसे किसी को कोई चीज दी जाती है, जायद चीज दी जाए तो वो जब तक कब्जा ना करे वो उसका मालिक नहीं बनता। तो यहां भी महरे मिसल तो 1000 था, खामन ने अगरचे 2000 जिक्र किया था लेकिन वो जो 1000 से जायद है उसकी अभी भी औरत मालिक नहीं बनी, वो औरत का अभी भी हक नहीं बना, लिहाजा 1000 ही देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, बेखिलाफिल बैई, बखिलाफ बैअ के। यहां से इमाम जुफर रहमहुल्ला के कियास का जवाब दे रहे हैं। इमाम जुफर रहमहुल्ला ने इस निकाह फासिद को कियास किया था बैअ फासिद पर, और बैअ फासिद में तो जितनी भी कीमत हो वो आती है। तो वो फरमाते हैं निकाह फासिद में भी जितना माहर मिसल होगा वही आएगा, चाहे वो मुसम्मा से जायद ही क्यों ना हो। तो उसका आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं, आप निकाह फासिद को बेअ फासिद पर कयास नहीं कर सकते। वजह यह कि बेअ फासिद के अंदर जो मबिया था वो माल था। मबिया क्या था? माल था। और माल और उसकी कोई ना कोई मार्केट में कीमत होती है, जबकि यहां पर जो मुनाफिए बुज़ा हैं वो माल नहीं है। अक़्दे सही होगा तो फिर इनकी कीमत होगी, वैसे उनकी कोई कीमत नहीं है। लिहाजा आप इस निकाह फासिद को बेअ फासिद पर कियास नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में फर्क है। एक में इवज माल है, दूसरे में इवज माल नहीं है। भाई तो कहते हैं बिखिलाफिल बेअ, बखिलाफ बेअ के, लिअन्नहु मालुन मुतकव्विमुन फी नफ्सिही, इसलिए क्योंकि बेअ फासिद के अंदर जो मबिया या जो इवज है वो तो माल मुतकव्विम है, फी नफ्सिही अपनी जात के एतबार से। मुतकव्विम यानी जिसकी कीमत हो, मार्केट में कीमत हो। लिअन्नहु मालुन मुतकव्विमुन फी नफ्सिही, इसलिए क्योंकि बेअ फासिद के अंदर जो इवज है वो तो माल मुतकव्विम होता है अपनी जात के एतबार से। फयतकद्दरु बदलुहु बिकीमतिही, लिहाजा उसका बदल मुतय्यन होगा उसकी कीमत के साथ। उसका बदल मुतय्यन होगा उसकी कीमत, मबिया दिया है तो उसका बदल उसकी कीमत देना पड़ेगी। भाई आगे देखिए, وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِلْحَاقًا لِلشُّبْهَةِ بِالْحَقِيقَةِ فِي مَوْزِعِ الْإِحْتِيَاطِ وَتَحَرُّزًا عَنِ اشْتِبَاهِ النَّسَبِ। मैंने आपको बतलाया निकाह फासिद में जब खावंद सोहबत कर ले तो अब औरत पर इद्दत भी वाजिब है। अब वही बयान कर रहे हैं, कहते हैं وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ, और इस औरत पर इद्दत भी वाजिब होगी जब खावंद क्या कर ले, सोहबत कर ले। إِلْحَاقًا لِلشُّبْهَةِ بِالْحَقِيقَةِ, इल्हाकन, इल्हा का माना मिलाना, मिलाते हुए, लि शुभहती, शुभ है निकाह को, बिल हकीकती, हकीकत निकाह के साथ। भैया हकीकतन तो निकाह नहीं हुआ, सिर्फ शुभ निकाह है, यानी इन दोनों का क्या ख्याल है, शायद हमारा निकाह हो चुका है। इनको मसले का पता नहीं था कि बगैर गवाहों के निकाह नहीं होता, तो ये क्या समझ रहे हैं हमारा निकाह हो चुका है। तो यहां हकीकत निकाह नहीं है बल्कि शुभ निकाह है, और शुभ निकाह को भी हकीकत निकाह वाला हुक्म दिया जाएगा। और हकीकत निकाह के अंदर तो जब जुदाई आ जाए खावंद और बीवी के दरमियान तो वहां इद्दत आती है, तो यहां पर भी जब जुदाई आ जाए, जब सोहबत की है तो अब औरत पर इद्दत आ जाएगी। तो कहते हैं वालैहल इद्दतु, और इस औरत पर इद्दत वाजिब होगी। इल्हाकन लिशुबहति बिल हकीकति, शुबह निकाह को मिलाते हुए, बिल हकीकति हकीकत निकाह के साथ, फी मौज़िउल इहतियाति एहतियात के मकाम में। भाई देखो इबारत थी इल्हाकन लिशुबहति, मिलाते हुए शुबह को, और मैं तर्जमा क्या कर रहा हूं, शुबह निकाह को मिलाते हुए, और आगे है बिल हकीकती हकीकत के साथ, और मैं तर्जमा कर रहा हूं हकीकत निकाह के साथ। वजह यह कि लि शुबहा अलिफ लाम दाखिल है अशुबहा पर, मालूम हुआ हर शुबा मुराद नहीं, कोई खास शुबा मुराद है, और वो कौन सा शुबा है, यहां शुबह निकाह मुराद है। और अल हकीकत पर भी अलिफ लाम दाखिल है, मालूम हुआ हर हकीकत नहीं मुराद, कोई खास हकीकत मुराद है, और वो यहां पर कौन सी हकीकत मुराद है, हकीकत निकाह। तो अशुबह से मुराद शुबह निकाह, और अल हकीकत से मुराद हकीकत निकाह। तो यह माना है इल्हाकन लिशुबहति बिल हकीकति, शुबह निकाह को हकीकत निकाह के साथ मिलाते हुए, फी मौज़िल एहतियाती एहतियात के मकाम में, यह एहतियात का मकाम है क्योंकि खावंद ने सोहबत की है, औरत हो सकता है हामिला हो चुकी हो, तो इस सूरत में अगर आगे इसको निकाह की इजाजत दे दी जाए कि यह फौरन आगे निकाह कर सकती है, तो फिर इस सूरत में बच्चे का नसब मुश्तबे हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा ये किसकी औलाद है। तो बच्चे के नसब को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए बतौर एहतियात के औरत पर इद्दत को वाजिब करार दिया गया। तो कहते हैं इल्हाकन लिशुबहति बिल हकीकति फी मौज़िल एहतियाती, शुबह निकाह को हकीकत निकाह के साथ मिलाते हुए एहतियात के मकाम में, व तहर्रुज़न अन इश्तिबाह नसबी, और बचने के लिए नसब के इश्तिबाह से, ताकि बच्चे के नसब में किसी किस्म का कोई इश्तिबाह ना आए। याद रखो ये व तहर्रुज़न, ये अत्फ़े तफसीरी है इल्हाकन के लिए। औरत पर क्यों इद्दत वाजिब की गई? ये एहतियात का मकाम था, तो शुबह निकाह को किससे मिला दिया गया? हकीकत निकाह के साथ। तफसीर कर दी कि यहां बच्चे का नसब मुश्तबे हो जाएगा, तो इश्तिबाह नसब से बचने के लिए इस शुबह निकाह को किससे मिलाया गया है? हकीकत निकाह से। तो कहते हैं वतहर्रुज़न अन इश्तिबाह नसबी, इश्तिबाह नसब से बचने के लिए, व युअतबर इब्तिदाउहा मिन वक्त तफरीक इल्ला मिन आखिरिल वत्आत। अच्छा भाई, अब ये इद्दत कब से शुमार की जाएगी? इद्दत कब से शुमार की जाएगी? तो इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि ये जो इद्दत इस औरत पर वाजिब हुई है, ये इस सोहबत की वजह से वाजिब हुई है, लिहाजा आखिरी सोहबत से इसकी इद्दत शुमार करेंगे। जब दोनों ने आपस में एक दूसरे को छोड़ने का पक्का इरादा किया, यानी या काजी ने दोनों में जुदाई करवा दी, उस वक्त से इद्दत नहीं शुमार करेंगे, बल्कि जिस वक्त खावंद ने आखिरी सोहबत कर ली थी उससे अगले दिन से इद्दत शुमार करेंगे। तो वो आखिरी वती का एतबार करते हैं कि ये इद्दत आई भी वती की वजह से थी, लिहाजा इसका शुमार भी आखिरी वती से ही होगा। जबकि हमारे अइम्मा फरमाते हैं कि ये जब काजी जुदाई करवा देगा, या बाहम जब ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने का पक्का इरादा कर लेंगे, तो उस वक्त से इद्दत शुमार करेंगे, आखिरी वती को नहीं देखेंगे। वो इसको कयास करते हैं निकाह सही पर। निकाह सही के अंदर जो इद्दत आती है वो जुदाई के बाद, तलाक के बाद आया करती है, तो यहां पर भी इद्दत जुदाई के बाद ही शुरू होगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वही अतबर इब्तिदा उहा मिन वक्त तफरीकी, और इद्दत की इब्तिदा का एतबार किया जाएगा मिन वक्त तफरीकी, जुदाई के वक्त से, ला मिन आखिरिल वत आती, न के आखिरी वती से। हुआ सही, यही कौल सही है, लिअन्नहा तजिबु बिएतबारी शुबहतिन निकाही, इसलिए क्योंकि ये वती वाजिब हुई है औरत पर शुबह निकाह के एतबार से। किस एतबार से? शुबह निकाह तो था ना, दोनों ने ईजाब भी किया है, कबूल भी किया है, लेकिन मसलन खराबी क्या आई, गवाह वहां मौजूद नहीं थे, तो शुबह निकाह की वजह से ये इद्दत आई है, तो लिहाजा इसको सही निकाह पर कयास किया जाएगा, और वहां पर जुदाई के बाद, तलाक के बाद इद्दत शुरू हो जाती है, तो यहां भी जुदाई के बाद इद्दत शुमार होगी भाई। तो कहते हैं लिअन्नहा तजिबु बिएतबारी शुबहतिन निकाही, इसलिए क्योंकि जो इद्दत वाजिब हुई है ये शुबह निकाह के एतबार से वाजिब हुई है, व रफ़उहा बित्तफरीकी, और ये शुबह निकाह उठ जाएगा यानी खत्म हो जाएगा बित्तफरीकी, जुदाई करवाने से। इद्दत क्यों आई है? शुबह निकाह की वजह से। और शुबह निकाह कब खत्म होगा? जब तफरीक करवा दी जाएगी तो फिर इद्दत शुरू होगी। वयसबुतु नसबु वलदिहा, और इस औरत के बच्चे का नसब भी साबित हो जाएगा, यानी ये वलदु जिना शुमार नहीं होगा, ये उसी शख्स का बेटा शुमार होगा। तो कहते हैं वयसबुतुन नसब वला दिहा, और इस औरत के बच्चे का नसब भी साबित होगा। लिअन्न नसब युहतातु फी इसबाती ही, इसलिए क्योंकि नसब जो है एहतियात की जाती है, फी इसबाती ही उसके साबित करने में, नसब के अंदर एहतियात की जाती है, जिस कदर हो सके बच्चे के लिए नसब साबित किया जाता है। क्यों? इहया अन लिल वलदी, बच्चे को जिंदा करने के लिए, बच्चे को जिंदगी देने के लिए। वजह यह कि अगर बच्चे का नसब साबित नहीं माना जाएगा, बच्चे का वलदु जिना माना जाएगा, इसका नसब साबित नहीं माना जाएगा, फिर तो कोई भी इस बच्चे की परवरिश नहीं करेगा, तो ये इस बच्चे की हलाकत का खतरा है। और अगर हलाक नहीं भी होता तो भी इसकी तरबियत करने वाला कोई नहीं होगा, और फिर बड़े होकर माशरे के अंदर भी एक मुअज्जज इंसान के तौर पर इसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो बच्चे को जिंदगी देने के लिए, इसलिए इस नसब के साबित करने में एहतियात की जाती है ताकि बच्चा जाया ना हो भाई। तो कहते हैं ली अन्न नसब युहतातु फी इसबाती ही, इसलिए क्योंकि नसब जो है एहतियात की जाती है इसके साबित करने में। इहया अन लिल वलदी, बच्चे को जिंदगी देने के लिए। फयतरत्तबु अलस साबिति मिन वजहीन, लिहाजा ये नसब मुरत्तब हो जाता है उस निकाह पर भी, अस साबिति मिन वजहीन, जो मिन वजह साबित है। फयतरत्तबु अलस साबिति मिन वजहीन, लिहाजा ये नसब मुरत्तब हो जाएगा अलस साबिति, उस निकाह पर जो साबित है, मिन वजहीन बाज एतबार से। भाई देखो, यहां तो निकाह जो है हकीकत में तो निकाह नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल निकाह की सूरत तो इन्होंने बनाई थी, ईजाब व कबूल तो किया था इन्होंने आपस में, तो इस एतबार से निकाह सूरतन है, हकीकतन नहीं। तो बाज एतबार से भी निकाह जब साबित है तो नसब के साबित करने में एहतियात से काम लिया जाता है, लिहाजा वो निकाह जो बाज एतबार से साबित है उस पर भी ये नसब मुरतब हो जाएगा और इस बच्चे का नसब साबित हो जाएगा। ये माना है फयतरत्तबु अलस साबिति मिन वजहीन, लिहाजा ये नसब मुरतब हो जाएगा उस निकाह पर जो बाज एतबार से साबित है। वह तो अतबर मुद्दतुन नसबी म्यू वक्त दुखूल, और नसब की मुद्दत का एतबार किया जाएगा म्यू वक्त दुखूल, इस सोहबत के वक्त से। इंदा मोहम्मदिन रहिमहुल्ला, इमाम मोहम्मद रहमल्ला के नजदीक। वह अलैहिल फतवा, और इसी पर फतवा है। याद रखिए, निकाह सहीह के अंदर मुद्दत नसब का एतबार किया जाता है वक्त निकाह से। मसलन एक औरत का एक शख्स से सहीह निकाह हुआ और इस औरत ने 6 माह बाद बच्चे को जन्म दे दिया, तो कम से कम 6 माह की मुद्दत में एक सही सलामत बच्चा पैदा हो सकता है। तो अब इस मुद्दत नसब का एतबार निकाह सही में निकाह के वक्त से किया जाएगा। निकाह के बाद 6 माह पूरे होने के बाद एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया है तो यह इसी खावंद का शुमार होगा, और अगर इससे पहले इसने बच्चे को जन्म दिया तो वह इस खावंद का शुमार नहीं होगा बल्कि वलदुज़्ज़िना शुमार होगा। तो मालूम हुआ निकाह सही में मुद्दत नसब का एतबार कब से किया जाता है? वक्त निकाह से। किससे? वक्त निकाह से। तो शेखैन फरमाते हैं निकाह फासिद के अंदर भी मुद्दत नसब का एतबार वक्त निकाह से किया जाएगा, यानी जिस वक्त इन्होंने निकाह किया है उसके 6 महीने पूरे होने के बाद औरत ने बच्चे को जन्म दिया तो इसका नसब साबित हो जाएगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, यहां पर मुद्दत नसब का एतबार किया जाएगा सोहबत के वक्त से। निकाह फासिद किया है एक शख्स ने एक औरत से और फिर उसके 1 महीने बाद इसने इस औरत से सोहबत की है उसी निकाह फासिद की वजह से, और फिर इसके बाद इसने 5 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दे दिया, तो अब निकाह के एतबार से तो 6 महीने पूरे हो गए लेकिन सोहबत के एतबार से 5 महीने गुजरे हैं। तो शेखैन फरमाते हैं निकाह का एतबार है लिहाजा ये बच्चा साबितुन नसब है, ये इसी शख्स का बच्चा शुमार होगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, सोहबत के वक्त से मुद्दत नसब का एतबार किया जाएगा और सोहबत के बाद तो सिर्फ 5 महीने गुजरे हैं लिहाजा ये बच्चा साबितुन नसब नहीं होगा, ये उस शख्स का बच्चा शुमार नहीं होगा। और याद रखो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल पर ही फतवा है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल पर ही फतवा है। वजह यह कि निकाह सही जो है वो दाई इलल वती है, वो वती की तरफ दावत देने वाला है, वती की तरफ ले जाने वाला है। क्योंकि एक शख्स का जब एक औरत से निकाह हो गया है वो जानता है यह औरत मेरे लिए हलाल हो चुकी है, तो निकाह सही किसकी तरफ ले जाने वाला है, वती की तरफ। लिहाजा इसलिए निकाह सही को वती के कायम मकाम कर दिया गया और वहीं से मुद्दत नसब शुमार की जाती है। जबकि निकाह फासिद वो तो फासिद है, उसका तो एतबार ही कोई नहीं, लिहाजा वो वती की तरफ दाई भी नहीं। जब वो वती की तरफ दाई नहीं तो उसको वती के कायम मकाम भी नहीं किया जाएगा। लिहाजा निकाह फासिद से मुद्दत शुमार नहीं करेंगे, बल्कि जब खावंद वती करेगा तब से मुद्दत शुमार करेंगे। तो कहते हैं वह तोतबर मुद्दत नसब में वक्त दुखूली, और मुद्दत नसब का एतबार किया जाएगा सोहबत के वक्त से। इंदा मोहम्मद इन रहमहुल्ला, इमाम मोहम्मद रहमल्ला के नजदीक, व अलैहिल फतवा, और इसी पर फतवा है। लिअन्ना निकाह फासिद लैसा बिदाइन इलैही, इसलिए क्योंकि निकाह फासिद जो है वो वती की तरफ दावत देने वाला नहीं है। वल इकामतु बिएतबारिही, और ये जो कायम मकाम करना था यानी इस निकाह को वती के जो कायम मकाम करना था, बेअतबारी ही, वो इसी एतबार से था कि निकाह दाई इललवती था, निकाह सही दाई इललवती था, इसलिए उसको वती के कायम मकाम कर दिया। लेकिन निकाह फासिद तो दाई इललवती नहीं, लिहाजा इसको वती के कायम मकाम नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं लिअन्ना निकाह फासिद लैसा बिदाइन इलैही, इसलिए क्योंकि निकाह फासिद जो है वो वती की तरफ दाई नहीं है। वल इकामतु बिएतबारी ही, और ये जो निकाह को वती के कायम मकाम किया जाता है, बेअतबारी ही, वो इसी दाई होने के एतबार से होता है। भाई आगे देखिए, काला व महरूम इसलिहा युअतबरु बिअखवातिहा व अम्मातिहा व बनाति अअमामिहा। अब महरे मिसल का बयान कर रहे हैं कि महरे मिसल के अंदर किन औरतों को देखा जाएगा। एक औरत के महरे मिसल का अंदाजा लगाना है तो किन औरतों के साथ उसका अंदाजा लगाया जाएगा, तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि नसब का एतबार बाप की तरफ से होता है। औलाद जो है वो अपने बाप के खानदान में से शुमार होती है, लिहाजा बाप के खानदान के अंदर जो औरतें हैं उनको देखा जाएगा, और जो इस औरत की जैसी हो अपनी सिफात के अंदर तो उनके साथ महरे मिसल का इसका अंदाजा लगाया जाएगा। मसलन इसकी बहनें हैं, इसी औरत की बहनें हैं, उनके महर को देखा जाएगा। इसी तरह या उसके चचा की बेटी है उसको देखा जाएगा, वो भी इसी के खानदान से है, या इसकी फूफियां जो हैं उनको देखा जाएगा, फूफियां जो बाप की बहनें हैं वो भी इसी के खानदान से हैं। मतलब यह है इसी के खानदान की औरतों के साथ इसका अंदाजा लगाया जाएगा। तो कहते हैं काल व महरूम मिसलिहा युअतबरु बिअखवातिहा, और उस औरत के महर मिसल का एतबार किया जाएगा बिअखवातिहा, उसकी बहनों के साथ, वह अम्मातिहा और उसकी फूफियों के साथ, वह बनाती अम्मामिहा और उसके चचों की बेटियों के साथ। लिकौल इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, बवजह हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के, आपने फरमाया लहा महरु मिसलि निसाइहा ला वक्सफीही वला शतता। भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, एक औरत का निकाह हुआ था और महर मुकर्रर नहीं किया गया था और सोहबत से पहले ही खावंद का इंतकाल हो गया। एक औरत का निकाह हुआ है, महर मुकर्रर नहीं किया और सोहबत से पहले ही खावंद का इंतकाल हो गया। और आप जानते हैं जब कोई महर मुकर्रर ना किया जाए तो महरे मिसल आ जाता है, और ये महरे मिसल खावंद सोहबत कर ले तब भी पक्का हो जाता है, और सोहबत से पहले खावंद का इंतकाल हो जाए तब भी ये महरे मिसल पक्का हो जाता है। देखिए ये हदीस हाशिए में पूरी दी हुई है। लिकौल इबन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कुलतु अखरजहु तिर्मिजी काला सुइल इब्न मसूद, कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, अन रजुलिन, एक ऐसे आदमी के बारे में, तज़व्वज इमरातन, जिसने एक औरत से निकाह किया, वलम यफ्रुज लहा सदाकन, और इस आदमी ने इस औरत के लिए कोई महर मुकर्रर नहीं किया, वलम यदखुल बिहा हत्ता माता, और इसने इस औरत के साथ सोहबत नहीं की थी यहां तक कि मर गया, इंतकाल हो गया। فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, لہا مثل صداق نسائها, اس عورت کے لیے مثل صداق نسائها, اس عورت کی عورتوں کے مہر کے مثل ہوگا. نسائها, ہذا میری اس عورت کو راجے ہے, مثل صداق نسائها, اس عورت کی عورتوں کے مہر کے مثل مہر جو ہوگا. اس عورت کی عورتیں مراد ہے اس عورت کے خاندان کی جو عورتیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لہا مثل صداق نسائها, اس عورت کے لیے اس کی عورتوں کے مہر کے مثل ہوگا. لا وقص ولا شطط, وقص کہتے ہیں کمی کو, واو چھوٹا کاف اور سین, وقص اس کا معنی ہے کمی. شطط بھائی شین طا ط, شطط کہتے ہیں زیادتی کو. لا وقص ولا شطط, نہ اس میں کمی ہوگی اور نہ زیادتی, یعنی پورا اتنا ہی دیں گے. وعلیہ العدت, اور اس عورت پر عدت واجب ہوگی. بھئی خاوند نے تو صحبت نہیں کی لیکن خاوند کا انتقال تو ہوا ہے, تو وہ انتقال والی عدت گزارے گی, یعنی چار مہینے دس دن. تو وعلیہ العدت, اور اس عورت پر عدت واجب ہوگی. ولہا المیراث, اور اس عورت کے لیے میراث بھی ہوگی, یہ وارثہ بنے گی اپنے خاوند کی. اب آئیے متن پر. کہتے ہیں لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں, لہا مہر مثل نسائها, کہ اس عورت کے لیے اس کی عورتوں کے مثل مہر ہوگا. لا وقص فیہ ولا شطط, نہ تو اس میں کوئی کمی ہوگی اور نہ زیادتی. وہن اقارب الابی, اور یہ عورتیں جو ہیں, وہن اور یہ عورتیں جو ہیں, اقارب الابی, اس عورت کے باپ کی رشتہ دار ہیں. نسائها, اس عورت کی عورتیں, اس سے کون مراد ہیں؟ کہتے ہیں ہن اقارب الابی, اس عورت کے باپ کی رشتہ دار عورتیں, یعنی باپ کے خاندان میں سے ہیں. بھائی بعض شارحین نے لکھا ہے کہ وہن اقارب الابی, یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی قول ہے, اور وہ تفسیر کر رہے ہیں نسائها کی. لیکن دیگر شارحین فرماتے ہیں کہ یہ صاحب ہدایہ کا قول ہے, یہ نسائها کی تفسیر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ, یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہے. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وہن, اس عورت کی جو عورتیں, وہ عورتیں ہیں, اقارب الابی, جو اس کی باپ کی رشتہ دار ہیں. ولی ان الانسان من جنس قوم ابی ہی, اور اس لیے کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے باپ کی قوم کی جنس میں سے ہوتا ہے, یعنی کس میں شمار ہوتا ہے؟ اپنے باپ کی قوم میں سے. وقیمت الشیء انما تعرف بالنظر فی قیمت جنسه, اور کسی چیز کی قیمت جو ہے اس کو جانا جاتا ہے, بالنظر فی قیمت جنسه, اسی کی جنس کی قیمت میں نظر کر کے. بھئی آپ نے جس چیز کی بھی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو اسی جنس کی چیزوں کی قیمتوں میں آپ کو نظر کرنا پڑے گی, اسی جنس کی چیزوں کی قیمتوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. مثلا آپ ایک سائیکل کی قیمت لگانا چاہتے ہیں تو اسی کی جنس کی, یعنی دوسری سائیکلوں کی قیمتوں میں آپ کو نظر ڈالنا پڑے گی, پھر آپ کو اس سائیکل کی قیمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. یا آپ ایک موٹر سائیکل کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اسی کی جنس کی جو چیزیں ہیں, یعنی دوسری موٹر سائیکلیں جو ہیں, ان کے اندر ان کی قیمت میں آپ کو نظر ڈالنا پڑے گی, پھر آپ کو اس موٹر سائیکل کی قیمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. تو لہذا ایک عورت جو ہے اس کے منافع بزا کی قیمت لگانی ہے, توجہ ہے, اس کے مہر کی بات چل رہی ہے. تو ایک عورت کے منافع بزا کی قیمت کا آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اسی کے خاندان کی جو عورتیں ہیں, جو اس کے مثل ہیں, جو اس جیسی ہیں, ان کے مہر سے اس کا اندازہ لگایا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وقیمت الشیء انما تعرف, کہ کسی چیز کی قیمت جو ہے اس کو جانا جاتا ہے, بالنظری فی قیمت جنسی ہی, اسی چیز کی جنس کی جو قیمت ہے اس میں نظر ڈالنے سے. کہتے ہیں ولا یعتبر بأمها وخالتها, اچھا بھائی اس عورت کی ماں ہے یا اس کی خالہ ہے, کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کے مہر کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا کیونکہ وہ عموماً الگ خاندان کی ہوں گی. لیکن اگر وہ بھی اسی خاندان سے ہیں, یعنی اس عورت کی جو ماں ہے وہ اس عورت کے باپ کے چچا کی بیٹی تھی, باپ نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی ہے, तो चचा की बेटी तो मालूम हो वो भी इसी खानदान की है, तो फिर इस सूरत में इस मां के साथ भी महर का अंदाजा लगाया जाएगा क्योंकि वो भी इसी कौम की है, इसी खानदान की है, और अगर वो दूसरे खानदान की है फिर उसके साथ महर का अंदाजा नहीं लगाया जाएगा। तो कहते हैं वला युअतबरु बि उम्मिहा व खालतिहा, और एतबार नहीं है उसकी मां का और उसकी खाला का, इदा लम तकूना मिन कबीलतिहा, जब ये दोनों उस औरत के कबीले से यानी उसके खानदान से न हो, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी कि बाप के खानदान को देखा जाएगा। फइन कानतिल उम्म मिन कौमी अबीहा, तो अगर वो औरत की मां जो है मिन कौमी अबीहा वो भी इसके बाप की कौम में से है, बि अन कानत बिनता अम्मी ही, बाई सूरत के वो इसके बाप के चचा की बेटी थी, उसके बाप के चचा की बेटी थी जिससे इसने निकाह किया था, फहीन इसी यो अतबरु भी महरीहा, तो फिर उस वक्त इसके महर का भी एतबार किया जाएगा, लिमा अन्नहा मिन कौमी अबीहा, इस वजह से कि यह भी इसके बाप के कौम में से है। वयो अतबरु फी महरिल मिसली, अब आपको बतलाएंगे कि महरे मिसल में किन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। तो कहते हैं वयुअतबरु फी महरिल मिसली, और महरे मिसल के अंदर यह मुअतबर है कि अंत तसावल मर आतानी, कि दो औरतें बराबर हों, फिसिन्नी उमर में, वल जमाली और हुस्नो जमाल में, वल माली और मालदारी में, वल अकली और अकल के अंदर, व दीनी और दीनदारी में, दीन से क्या मुराद है, दीनदारी मुराद है, दीनदारी में, यानी इसके बाप के खानदान में ऐसी और औरतों का क्या महर है जिनकी इसी जैसी उम्र हो, इसी जैसा हुस्नो जमाल हो, इसी जितना मालदार भी इसी की तरह है, और इसी की तरह अकल वाली भी है, और इसी की तरह दीनदार भी है, इन सब सिफात को देखा जाएगा इस खानदान की, और दूसरी औरतें जो इन तमाम सिफात में इस औरत जैसी हों तो उनका जो महर था वही इसका भी महर होगा। और अगर सारी सिफात न मिल सकें तो जितनी मौजूद हों वो उन्हीं के साथ देख लिया जाएगा। और फिर अगर बाप के खानदान में कोई भी ऐसी नहीं है, बाप के खानदान में कोई भी ऐसी नहीं है इन सिफात वाली, तो फिर इस सूरत में और अतराफ के और इनके बराबर के जो खानदान हो वहां इन सिफात वाली औरत का जो महर होता है वो ही इसका महर मिसल करार दिया जाएगा। तो कहते हैं फिर देखिए, कहते हैं वयो अतबरु फी महरिल मिसली, और महर मिसल के अंदर मोतबर ये है कि अंत तसावल मर अतानी फी सिन्नी वल जमाली वल माली वल अकली व दीनी, कि दोनों औरतें बराबर हों उम्र में और हुस्नो जमाल में, माल में और अकल में और दीनदारी में। दीनदारी से मुराद यह है कि यह औरत जितनी दीनदार है, दीन पर अमल करने वाली है, और जितने तकवा वाली है, तो दूसरी औरत भी इसी जैसी हो। भाई ये वो चीजें हैं जिनके अंदर लोग रगबत रखते हैं। देखो उम्र है, एक कम उम्र वाली है, एक ज्यादा उम्र वाली है, तो लोग कम उम्र के अंदर रगबत रखते हैं। इसी तरह एक में हुस्नो जमाल ज्यादा है, एक में कम है, तो लोग ज्यादा हुस्नो जमाल वाली में रगबत रखते हैं। तो इन चीजों की वजह से महर पर असर पड़ता है। भाई तो कहते हैं दोनों औरतें बराबर हों फिस सिन्नी उमर में, वल जमाली और हुस्नो जमाल में, वल माली और मालदारी में, वल अकली और अकल में, व दीनी और दीनदारी में, वल बलदी और शहर में, वल असरी और जमाने में। शहर और जमाने से भी फर्क पड़ जाता है। बाज इलाकों के अंदर महर ज्यादा होता है और बाज इलाकों के अंदर महर कम होता है, तो इलाके के बदलने से भी फर्क पड़ेगा। और नीज वल असरी, जमाने का भी फर्क पड़ता है। बाज जमाने के किसी जमाने के अंदर महर ज्यादा होता है और बाज जमानों के अंदर महर कम होता है। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं वल बलदी वल आसरी, और शहर के एतबार से भी दोनों औरतें बराबर हों यानी एक ही इलाके की हों, वल आसरी और जमाने के एतबार से भी बराबर हों यानी एक ही जमाने की हों, लिअन्ना महरल मिसली यख्तलिफु बिख्तिलाफी हादिहिल औसाफी, इसलिए क्योंकि महर मिसल जो है वो मुख्तलिफ होता है इन औसाफ के मुख्तलिफ होने से, वकदा यख्तलिफु बिख्तिलाफी दारी वल आसरी, और इसी तरह महर मिसल मुख्तलिफ होता है दार यानी शहर के बदलने से भी, वल आसरी और जमाने के बदलने से भी। भाई दार और असर को अलग जिक्र किया और बाकियों में कहा लि अन्ना महरल मिसली यख्तलिफू बि इख्तिलाफी हाज़िहिल औसाफी। भाई जब हाज़िहिल औसाफ कह दिया तो फिर दार और असर को क्यों अलग जिक्र किया? वजह यह कि हाज़िहिल औसाफ में बलद और जमाना दाखिल नहीं, बाकी औरत की सिफतें हैं, कम उम्र होना, हुस्न जमाल वाला होना, मालदार होना, अकलमंद होना, दीनदार होना, ये सब औरत की सिफतें हैं, जबकि जमाना और इलाका और शहर ये तो औरत की सिफत नहीं, इसलिए इनको अलग जिक्र किया। तो कहते हैं वकदा यख्तलिफु बिख्तिलाफी दारी वल आसरी, और इसी तरह महर मुख्तलिफ होता है दार और यानी शहर और जमाने के मुख्तलिफ होने से। कालू फुकहा फरमाते हैं वयुतबरु तसावी ऐजन फिल बकारती के बाकिरा होने के अंदर भी तसावी मुतबर है, बाकिरा होने में भी बराबरी मुतबर है, उसके अंदर भी बराबरी देखी जाएगी। वजह यह कि बाकिरा और सैयबा होने की वजह से भी लोगों की रगबत बदलती है, लोग बाकिरा में ज्यादा रगबत रखते हैं बमुकाबला सैयबा के, लिहाजा इसलिए बाकिरा का महर ज्यादा होता है और सैयबा का महर कम होता है। तो कहते हैं कालू फुकहा फरमाते हैं वयुतबरु तसावी ऐजन फिल बकारती के बकारत के अंदर भी बराबरी मुतबर है। लिअन्नहु यख्तलिफु बिल बकारती वस्सुयूबती, इसलिए क्योंकि महर मुख्तलिफ होता है बाकेरा होने और सैयबा होने से। बात समझ में आ गई? तो देखो साहिब हिदाया ने आखिर में फरमाया कालू फुकहा फरमाते हैं बाकेरा होने में भी बराबरी मुतबर है। वजह यह कि ये जो पीछे मतन था उसके अंदर बकारत का जिक्र नहीं था। बकारत को इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला ने जामे सगीर में भी जिक्र नहीं फरमाया और साहिब कुदूरी ने भी अपने मतन में जिक्र नहीं फरमाया, लिहाजा मतन के अंदर तो बकारत का जिक्र नहीं था, लेकिन बाज बड़े फुकहा ने बकारत को भी जिक्र फरमाया है। तो बकारत में बराबरी भी मुतबर है, इसलिए साहिब हिदाया ने कालू के साथ इसको जिक्र किया कि फुकहा क्या फरमाते हैं बाकेरा होने में भी बराबरी मुतबर है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस बेहदा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।